नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज आपके साथ मैं हूं जागृति शर्मा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 5-4 से हराया। अंकुशिता बोरो पेरिस ओलंपिक के दूसरे मुक्केबाजी विश्व क्वालिफायर के प्री क्वार्टर फाइनल में। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट आज से शुरू। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा का मुकाबला फ्रांस के अली रजा फिरोजा से और आर वैशाली का मुकाबला महिला विश्व चैंपियन चीन की वेंजुन जू से। और पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन सहित शीर्ष भारतीय खिलाड़ी कल से शुरू हो रहे सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और बात करेंगे सबसे पहले हॉकी की। और मोना, अच्छी बात यह है कि एफआईएच हॉकी प्रो लीग के जो यूरोपीय चरण के मुकाबले हैं, आज उसमें भारत ने अर्जेंटीना को हराया है 5-4 से। जो प्रदर्शन की बात कही जाती है भारत के लिए कि कभी न हारने और प्रयास करने वाली टीम है, तो वो स्पिरिट आज दिखाई है भारतीय टीम ने।
बिल्कुल दिखाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कप्तान हरमनप्रीत सिंह की फॉर्म को लेकर बात हो रही थी, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में अभी बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है और तैयारी के लिए दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से बेल्जियम से हम हारे थे दो मुकाबले, और शुरुआत हालांकि हमने यूरोपीय चरण की जीत के साथ की थी, लेकिन आज की जीत से फायदा यह हुआ है कि कम से कम कुछ समय के लिए अभी तो भारतीय टीम नीदरलैंड के बाद दूसरे स्थान पर आ गई है जो एफआईएच प्रो लीग की तालिका है। हालांकि भारत ने 12 मैच इस सीजन के इस साइकिल के अभी तक खेल लिए हैं और 21 अंक हैं भारत के। ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है जिसके 20 अंक हैं, लेकिन उसने अभी 8 ही मैच खेले हैं। तो काफी नेक टू नेक फाइट होती है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की हॉकी खेली जाती है। और यहां पर मुझे लगता है कि भारतीय टीम को जितने भी अपने कमजोर नट बोल्ट हैं वो टाइट करने होंगे, क्योंकि टोक्यो में जो कांस्य पदक जीता था, उम्मीद यही की जा रही है कि महिला टीम भी इस बार नहीं है कि भारतीय पुरुष टीम पदक की प्रबल दावेदारों में से एक होगी। और यहां पर प्रदर्शन बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा भारत को।
आइए इस पर एक रिपोर्ट सुनते हैं।
भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल दागे, वहीं अरजीत सिंह हुंदल और गुरजन सिंह ने एक एक गोल किए, जबकि अर्जेंटीना के लिए फेडरिको मोंजा, निकोलस कीनन, तादेव मारुची और लुकास मार्टिनेज ने एक एक गोल दागे। भारत ने मैच की शुरुआत शानदार की, हालांकि अर्जेंटीना ने पहला गोल कर बढ़त बना ली थी। जवाब में भारत ने अरजीत सिंह हुंदल के शानदार फील्ड गोल से जल्द ही बराबरी कर ली। फिर 1 मिनट शेष रहते भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके और पहला क्वार्टर 1-1 से बराबरी पर खत्म हुआ। तीसरा क्वार्टर रोमांचक था, जिसमें दोनों टीमों ने तेज तर्रार होगी का प्रदर्शन करते हुए आक्रमण की गति बढ़ा दी। भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वह इसे गोल में नहीं बदल सका। चौथे क्वार्टर में भारत ने मैच की लगाम पूरी तरह अपने पास रखी। उन्होंने अर्जेंटीना को गलतियां करने के लिए मजबूर किया। कप्तान हरमनप्रीत ने टीम के लिए एक और गोल किया। इस तरह भारत ने 4-2 की बढ़त ले ली। 2 मिनट बाद भारत को एक और पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने फिर से सफलतापूर्वक गोल में बदल दिया। अर्जेंटीना ने तादेव मारुची और लुकास मार्टिनेज के गोल की मदद से मैच को रोमांचक रूप से अंत तक पहुंचाया। हालांकि मैच भारत की 5-4 से जीत के साथ समाप्त हुआ। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन।
भारत का अगला मुकाबला 1 जून को जर्मनी से होगा, और ये जो अगला मुकाबला है जर्मनी के साथ, इस मुकाबले को किस तरह देखते हैं?
देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आप किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो आपको हार्ड टेस्ट से होकर तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है। और ये जो टीमें हैं सारी, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो बेल्जियम हो, अर्जेंटीना हो, ये वर्ल्ड हॉकी में जो शीर्ष टीमें हैं, आला तरीन टीमें हैं, उनसे मुकाबले करने बहुत जरूरी है ताकि आपको अपनी कमजोरियों का पता चल सके। और यहां पर हमने देखा है कि भारतीय टीम, पिछली बार भी टोक्यो से पहले हमने देखा था कि बड़ी टीमों के खिलाफ तैयारी करके हम गए थे और इसका फायदा खेलों में हमें मिला। तो यहां पर भी मुझे लगता है अभी डेढ़ महीने का समय है टूर्नामेंट में, तो इस दौरे से भारत को काफी फायदा होगा कि जर्मनी टॉप टीमों में से एक है और उसके खिलाफ खेलेंगे तो जरूर भारतीय टीम को अपनी कमजोरियों का पता चलेगा और उस पर काम हो सकेगा।
और बात करें अगर महिला हॉकी की तो जूनियर महिला हॉकी टीम जो यूरोपीय दौरे पर है जर्मनी के खिलाफ चौथे मैच में उसे 0-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जर्मनी ने पहले क्वार्टर की शुरुआत में ही 1-0 की बढ़त बना ली और वो अंत तक जारी रही। तो महिलाओं का जो प्रदर्शन अभी जिस तरह से
जी बिल्कुल जूनियर महिलाओं का प्रदर्शन इस दौरे पर अभी तक निराशाजनक ही रहा है। इस मैच के बाद एक अगला मैच भी हुआ जिसमें भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। काफी सारे गोल हुए उसमें लेकिन भारतीय टीम जीत दर्ज नहीं कर सकी। तो यहां पर थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी होगी लेकिन जूनियर स्तर के मुकाबले और इस तरह के टूर्नामेंटों से इस तरह की श्रृंखलाओं से ही खिलाड़ी सीखते हैं और आगे जाकर समय के साथ प्रदर्शन में परिपक्वता आती है।
जी और भारतीय महिला जूनियर टीम अब अपना अगला मैच सोमवार को जर्मनी से खेलेगी। पूर्व विश्व युवा चैंपियन अंकुशिता बोरो आज बैंकॉक में पेरिस ओलंपिक के दूसरे मुक्केबाजी विश्व क्वालिफायर के 60 किलोग्राम भार वर्ग में के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने मंगोलिया की नामून मोनखोर को हराया। हालांकि अभिमन्यु लोरा को आयरलैंड के केलिन केसडी से 80 किलोग्राम भार वर्ग में शिकस्त झेलनी पड़ी। तो ये जो क्वालिफायर चल रहे हैं अभी मुक्केबाजी के, हालांकि भारत जो है अभी तक 3 कोटा हासिल कर चुका है।
बिल्कुल 3 कोटे अभी तक मिले हैं। निकल जरीन को 50 किलो में, प्रीति को 54 में और लवलीना बोरगोहेन को 75 में और चौथे कोटे का अभी इंतजार है। ये दूसरा क्वालिफायर है पेरिस ओलंपिक के लिए और अभी इसके बाद एक क्वालिफायर और है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि अभी तो खैर बहुत ही शुरुआती दौर का मुकाबला है, यहां से कोटा हासिल करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है।
क्या लगता है कि दूसरे क्वालिफायर में कितने कोटे भारत को हासिल हो सकते हैं?
देखिए हासिल होने को तो हर खिलाड़ी दावेदार है लेकिन जो कंटिन्यूटी चाहिए परफॉर्मेंस में, जो प्रदर्शन में निरंतरता बहुत जरूरी है और यहां से उम्मीद यही करते हैं कि आगे तक जाकर सेमीफाइनल से आगे जाकर खिलाड़ी चौथा कोटा जिसका इंतजार है वो भारत की झोली में डालेंगे।
बिल्कुल। और कल सचिन सिवाच, अभिनाश जामवाल, निशांत देव अपने अपने भार वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए उतरेंगे। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा फ्रांस के अलीरजा फिरोजा से अपना मुकाबला खेलेंगे जबकि आर वैशाली का मुकाबला महिला विश्व चैंपियन चीन की वेंजुनू जू से होगा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग के शीर्ष 6 ग्रैंडमास्टर भाग ले रहे हैं। प्रज्ञानंदा के मुकाबले के बारे में क्या लगता है क्योंकि अभी जो इससे पहले टूर्नामेंट हुआ है उसके बाद में प्रज्ञानंदा से जो लोगों की उम्मीदें हैं?
बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ी हुई है और चाहे प्रज्ञानानंदा हो, चाहे डी गुकेश हो, चाहे अर्जुन एरिगेसी हो, बहुत ही जबरदस्त पिछले कुछ अरसे में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की जो ये नई पौध है इनका प्रदर्शन रहा है और यहां पर हम जरूर उम्मीद करेंगे प्रज्ञानानंदा से। पहला मुकाबला तो मुझे लग रहा है कमोबेश उनके लिए आसान ही होना चाहिए और इस टूर्नामेंट के जरिए नॉर्वे में हो रहा है और मैग्नस कार्लसन भी वापसी कर रहे हैं तो काफी बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। कार्लसन लंबे समय बाद खेल रहे हैं, डिंग लिरेन भी है जिनसे
दोनों का पहला
जी बिल्कुल जिनसे डी गुकेश को इस साल के आखिर में वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला खेलना है तो उन पर भी नजरें यहां पर होगी और महिला वर्ग में भी वैशाली के साथ साथ अनुभवी कोनेरू हम्पी भी खेल रही हैं यहां। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में एक निरंतरता हमें यहां देखने को मिलेगी।
तो ये जो टूर्नामेंट है क्या बाकी टूर्नामेंट की तरह या इसके फॉर्मेट में कुछ चेंज?
नहीं, इसमें ये डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाता है और जैसे हम देखते हैं चेस में कि ड्रॉ बाजियां होती हैं लेकिन इसमें ड्रॉ बाजी होने पे अंक का बंटवारा नहीं होता है। इसमें फिर आर्मेगेडॉन खेला जाता है जिसमें अगर आपका मुकाबला बराबरी पर रहा है तो एक बाजी और खेली जाएगी जिसको आर्मेगेडॉन कहते हैं और उसके बाद जो उसको जीतता है उसको डेढ़ अंक, ढाई अंक और जो हारता है उसको उससे आधा अंक कम मिलता है, तो यहां पे अंक बढ़ते नहीं है।
और अब बात बैडमिंटन की। पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन सहित शीर्ष भारतीय खिलाड़ी कल से शुरू हो रहे सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में भाग लेंगे और इन खिलाड़ियों की कोशिश अपना दमदार प्रदर्शन करके पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की रहेगी। तो जैसे हम हर क्वालिफायर की या फिर टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं कि चूंकि अब ओलंपिक्स बहुत नजदीक है, एक से डेढ़ महीने का ही समय है, तो ऐसे में खिलाड़ियों को भी अपने में लग रहा है कि हमें मेहनत करनी है और कंसिस्टेंसी अपनी तैयार करनी है, बनाए रखना है इसको।
बहुत जरूरी है क्योंकि बैडमिंटन में जो पिछले कुछ सालों में ओलंपिक में परफॉर्मेंस रहा है तो बैडमिंटन बहुत बड़ी पदक उम्मीद में से एक है। और यहां पर पीवी सिंधु पर नजरें होंगी जो 2022 के बाद से कोई खिताब जीत नहीं पाई है और ये सिंगापुर उनके लिए लकी भी रहा है टूर्नामेंट। तो हाल ही में मलेशिया मास्टर्स में वो उपविजेता रही, वहां अच्छा प्रदर्शन करके फ्लैशेस में उन्होंने पुरानी पीवी सिंधु वाली झलक दिखाई है। तो उम्मीद यही करेंगे कि यहां पर वो कम से कम फाइनल तक पहुंचकर पेरिस ओलंपिक की अपनी तैयारियों को पुख्ता करे। बड़ा टूर्नामेंट है, काफी बड़े खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और कैरोलिना मारिन जो उनकी जिसको कहते हैं चिर प्रतिद्वंदी है वो भी यहां खेल रही हैं जो मलेशिया मास्टर्स नहीं खेली थी, तो उनके लिए अच्छी तैयारी होगी। और लक्ष्य सेन ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि वो उस रिदम को हासिल करेंगे जो लक्ष्य सेन जिसके लिए जाने जाते हैं, चाहे फिर वो सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी हो। हाल ही में थाईलैंड ओपन जीते हैं, भारत की सबसे बड़ी बैडमिंटन में कहें तो पदक उम्मीद है।
सबसे बड़ी
जी बिल्कुल। तो ये सुपर 750 टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है और बड़े खिलाड़ी हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी तैयारी होगी भारतीय खिलाड़ियों के लिए।
बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ये जो उम्मीदें हैं उनको भी पूरा करें और अपने खेल को भी बेहतर बनाएंगे। शुभंकर डे को ऑस्ट्रिया ओपन बैडमिंटन इंटरनेशनल चैलेंज के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के प्राहदिस्का बगास शुजिवो के खिलाफ सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में पीएस रवि कृष्णा और अक्षन शेट्टी तथा मिक्स डबल्स में संजय श्रीवत्स, धनराज और मनीषा को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के कोबे में हुई विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पैरा एथलेटिक्स टीम को बधाई दी है। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य समेत 17 पदक जीते। भारतीय टीम तालिका में 6ठे स्थान पर रही। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल हालांकि कल जो फाइनल है मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन इस मुकाबले को जो आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कल खेला गया, कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। फाइनल मुकाबले को किस तरह देखा?
देखिए बिल्कुल ही एक तरफा मुकाबला था। आईपीएल को लेकर जो रोमांच रहता है कि मुकाबले आखिरी गेंद तक जा रहे हैं, वैसा कुछ यहां देखने को मिला नहीं। तो दर्शकों को भी जो स्टेडियम में मौजूद थे उनको भी और जो टीवी के आगे आंखें गड़ाए बैठे थे उनको भी बहुत ही निराशा हाथ लगी। लेकिन केकेआर के लिए अच्छी बात यह है कि 10 साल बाद ट्रॉफी उनके पास आई है और पूरा जोश देखने को मिल रहा था, मालिक से लेकर प्लेयर से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक सारा केकेआर का खेमा जो है आह्लादित था। सनराइजर्स के लिए निराशाजनक क्योंकि सुपर फास्ट बल्लेबाजी की एक जो नई परिभाषा उन्होंने गढ़ी थी इस आईपीएल में, फाइनल में उनके बल्लेबाज नहीं चल पाए और जब जरूरत होती है उस समय ही टीम वो आखिरी तिलिस्म जिसको कहते हैं वो तोड़ नहीं सकी और सनराइजर्स के फैन को जरूर यहां बहुत निराशा हाथ लगी।
बिल्कुल, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं उसी चीज को उन्होंने वहां पर ब्रेक लगा दिया।
बिल्कुल, बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन रहा और यही होता है कि जब एक या दो खिलाड़ी पर अत्यधिक निर्भरता आपकी हो जाती है तो बड़े मुकाबले में एज ए यूनिट आप देखते हैं कि जीतते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स ने वही करके दिखाया, बल्लेबाज गेंदबाज सब चले।
और इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। मुना, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
शुक्रिया।
आप सभी को नमस्कार।